नेपथ्य। ग्यारहवीं या बारहवीं शताब्दी से संस्कृत नाटक और भारतीय रंगमंच के ह्रास का दौर आरंभ हुआ। इसके सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों का विवेचन या विश्लेषण इस अध्ययन का प्रयोजन नहीं है, किंतु इतना जानना आवश्यक है कि जिस नाट्यशास्त्र के गोमुख से निकलकर भारतीय रंगमंच इतना समृद्ध हुआ, उसके विकास के चिन्ह धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। यह भी विचारणीय है कि भारतीय संगीत और भारतीय नृत्य राजाश्रय के अभाव में मंदिरों में केंद्रित हो गए। दूसरे शब्दों में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रकारांतर में देवाश्रय में ही पनपे और पुष्पित हुए। भरतनाट्यम, ओडिसी आदि नृत्य शैलियों के पारंपरिक रूपों के अविच्छिन्न भावधारा इस उक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन भारतीय नाट्य रूपों के साथ ऐसा संभव नहीं हो सका। दक्षिण भारत की कुछ नाट्य शैलियाँ यथा कुट्टियाट्टम, कथकली तथा उत्तर पूर्व की अंकिया नाट जैसी नाट्य शैलियों को इस संदर्भ में अपवाद स्वरूप देखा जा सकता है। शेष भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक उथल पुथल के कारण भारतीय नाट्य को जबरदस्त धक्का लगा। इसका एक पक्ष यह भी है कि संगीत और नृत्य का प्रशिक्षण या प्रदर्शन किसी न किसी रूप में दर्शकों की अनुपस्थिति में भी संभव है, जबकि नाटक के लिए दर्शक की सामूहिक उपस्थिति अनिवार्य है और दर्शक के अभाव में रंगमंच संभव ही नहीं है। सामूहिक कला होने के कारण भारतीय नाट्य अस्तित्व का संकट गहराने लगा। देश के प्रमुख नगर या प्रांतों के प्रमुख केंद्र, जो किसी समय इन भारतीय कला रूपों के प्रदर्शन के बहुत बड़े आश्रय स्थल थे, सामाजिक विघटन के कारण ध्वस्त हो गए। नाटकों के प्रदर्शन में व्यवधान होने के कारण धीरे धीरे संस्कृत नाटकों के लेखन पर भी इसका प्रभाव पड़ा। भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, बोधायन आदि नाटककारों की परंपरा भी टूटने लगी और भारतीय शास्त्रीय रंगमंच के प्रयोग पक्ष का लोप हो शुरू हो गया। शास्त्रीय नाटकों पर हुए इस पक्षाघात के बावजूद भारतीय रंगकर्म लुप्त नहीं हुआ। राजाश्रय और देवाश्रय के अभाव में भारतीय रंगमंच लोकाश्रय में पनपता रहा। हमारे देश का लोकधर्मी नाटक शास्त्र का मोहताज नहीं रहा। आदिम भावनाएं, संवेदनाएं, अनुष्ठान, रीति रिवाज, संगीत एवं नृत्य, इन सभी ने मिलकर जिस नाट्य रूप की जमीन तैयार की, वही लोकधर्मी नाटक के रूप में प्रकारांतर में प्रतिष्ठित हुआ। वस्तुतः लोक रंगमंच ही अपनी अनेक विशेषताओं के कारण शास्त्रीय व्याकरण का आधार बनता है। प्रत्येक देश और काल में ऐसा ही हुआ है। इसीलिए यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि हमारे देश में भी रंगमंच का विकास सबसे पहले लोक नाट्य के रूप में हुआ। भौगोलिक या सामाजिक कारणों से इसमें यत्किंचित फेरबदल जरूर नजर आ सकता है, लेकिन दार्शनिक तथा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और मनुष्य की अस्मिता के रक्षक तत्व ही लोक नाट्य के प्राण तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यही कारण है कि कश्मीर से तमिलनाडु तक और मणिपुर से राजस्थान तक के भारतीय लोक नाट्य रूपों में हमें ऐसे अनेक समानताएं नजर आती हैं जो आश्चर्यजनक रूप से इसकी एकात्म निष्ठा को रेखांकित करती हैं। मुगल काल में, विशेष रूप से अकबर के राज्यकाल में हिंदी प्रदेश में संगीत और नृत्य का पुनर्विकास आरंभ हुआ। इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि जो इस्लाम धर्म बुद्ध परस्ती का विरोध करता है, वह इस्लाम धर्म इस देश में अनेक भारतीय कला रूपों को फिर से प्रदर्शित करने का संवाहक बना। भारतीय शास्त्रीय संगीत तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे शास्त्रीय संगीत में मुसलमान कलाकारों का योगदान इस दृष्टि से अप्रतिम है। संगीत के अतिरिक्त हमारे नृत्य शैलियों में भी यह योगदान स्पष्ट रूप से नजर आता है। खासतौर से कथक नृत्य शैली में आमद, सलाम आदि की बंदिशें इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके बावजूद मुगल काल में भी हमारा शास्त्रीय रंगमंच पुनर्प्रतिष्ठित नहीं हो सका। ऐसे संकट काल में भारतीय लोक नाट्य रूपों में न केवल रंगमंच को निरंतरता प्रदान की, बल्कि लोक जीवन के सभी आधारभूत तत्वों के निरूपण के संवाहक भी बने रहे। अंग्रेजों के आगमन के समय तक भारतीय रंगमंच बड़े नगरों और संभ्रांत कहे जाने वाले सामाजिक वर्ग से दूर चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के साहब बहादुरों या काले साहबों के मनोरंजन के लिए इंग्लैंड से आने वाली थिएटर कंपनियों ने इस रिक्तता को भरने का काम किया। आरंभ में शेक्सपियर और बाद में शाह, इब्सन, चेखव के नाटकों से भारतीय भद्रलोक का परिचय हुआ और देखते देखते पाश्चात्य रंग विधान ने भारतीय जमीन पर अपने पंजे गाड़ दिए। कलकत्ता और बम्बई इनके सबसे बड़े केंद्र थे। भद्रलोक के अतिशय समर्थन और प्रोत्साहन के कारण शेक्सपियर के नाटक प्रदर्शित करने वाले इंग्लिश कंपनियों को आशा से सफलता मिली और व्यावसायिक दृष्टि संपन्न एक भारतीय वर्ग ने जन सामान्य की रुचियों को तुष्ट करने के लिए एक नए किस्म का रंगमंच विकसित किया। इसमें भारतीय पाश्चात्य रंगधर्मिता का अद्भुत समन्वय था। पारसी थिएटर या कंपनी थिएटर के नाम से लोकप्रिय यह रंगमंच 20वीं शताब्दी तक देश के कोने कोने में अपनी विजय के डंके बजा चुका था। बड़े नगरों के आसपास के ग्रामीण अंचलों पर भी इस व्यावसायिक रंगकर्म का प्रभाव पड़ा और हमारे देश के अनेक लोक नाट्य रूप इसकी चपेट से नहीं बच सके। फिर भी भारतीय रंगमंच के संक्रमण काल में यदि अपनी रंग अस्मिता की रक्षा करने में कोई नाट्य रूप सफल हुआ है, तो निस्संदेह वह भारतीय लोक नाट्य ही है। इन लोक नाट्य रूपों में अपनी भाषा, भूषा, संगीत, नृत्य, वाद्य, लोक कथाओं, पुराणों, लोक देवताओं, अनुष्ठानों, उत्सव, त्यौहार, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अनेकानेक जीवनगत संदर्भों को आत्मसात करके ने निरंतर जीवंत बनाए रखा। इसीलिए लोक नाट्यों का स्वरूप पारंपरिक भी है और समसामयिक लोक जीवन के संदर्भ में भी पारदर्शी भी। अपने समाज के निरंतर होते रहने वाले परिवर्तन में प्रत्यक्ष तौर पर लक्षित होती है। यही कारण है कि इनमें झलकने वाली भारतीयता कृत्रिम नहीं है, जबकि पाश्चात्य रंगमंची अवधारणाओं से प्रेरित या अनुप्राणित भारतीयता पूरी तरह आरोपित है। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय इंदु हरिश्चंद्र गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों ने इस स्थिति के विरोध में एक जबरदस्त पहल शुरू की। भारतीय इंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में चाहे वह अंधेर नगरी हो या वैदिक हिंसा, हिंसा अनुभव थी विशेष विश्वसधम हो या भारत दुर्दशा, सभी का मुहावरा आश्चर्यजनक रूप से हमारे लोक नाट्य के मुहावरे से बेहद साम्य रखता है। दूसरी ओर हमें नाट्य संबंधी अवधारणाओं का संबंध भारतेंदु का लंबा लेख नाटक इस बात का परिचायक है कि वह पाश्चात्य नाट्य अवधारणाओं के बरक्स एक ऐसे नाट्य अवधारणा की प्रतिष्ठा में संलग्न थे जो शरीर और आत्मा दोनों ही तरह से पूरी तरह भारतीय हो। इधर बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर भी इसी भावभूमि पर आधारित भारतीय शास्त्रीय रंगमंच की पूर्ण प्रतिष्ठा में संलग्न थे। उनके नाटक रक्तकरवी, मुक्तधारा, विसर्जन, राजा, डाकघर आदि सभी में जिस नाट्य मुहावरे की प्रतिष्ठा नजर आती है वह पाश्चात्य कदापि नहीं, वरन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। टैगोर ने रंगमंच शीर्षक से एक लंबा आलेख लिखा जो जनवरी 1913 में बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। इस आलेख का पहला वाक्य टैगोर की नाट्य अवधारणाओं को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। वह कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कामा, भरतेतर नाट्यशास्त्रे नाट्य मंचरी वर्णना आक्षे ताहाते दिष्ट पटेर कोना आलेख देखते आई पाइना ताहाते ये विशेष क्षति हयाल छिल ई रूम आमी बोध कारीना इन्वर्टेड कामा बंद। इसी आलेख में पाश्चात्य यथार्थवादी रंगमंची अवधारणाओं के वृक्ष भारतीय अवधारणाओं की विशेषता को रेखांकित करते हैं। यहाँ यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारतेंदु और टैगोर दोनों ने पाश्चात्य नाट्य अवधारणाओं का गहन अध्ययन किया था और दोनों ही इसके विरोध में भारतीय नाट्य अवधारणाओं को पुनर्प्रतिष्ठा में संकल्पित थे। टैगोर ने अपने नाटकों के प्रदर्शन के कथित प्रयोग भी किए, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति में ऊपर से नीचे तक डूबी हुए तथा कथित भद्र लोक ने उनकी आंतरिक निष्ठा को स्वीकार नहीं किया। परिणामतः भारत में ही नहीं अपने बंगाल में भी टैगोर को नाटककार या नाट्य चिंतक की प्रतिष्ठा नहीं मिली और उनके रंगकर्म या रंग चिंतन को हाशिए पर डाल दिया गया। भारतीय हरिश्चंद्र की अल्प समय मृत्यु हिंदी प्रदेश के रंगकर्म को जबरदस्त झटका देने वाले सिद्ध हुई। इसके बाद उनके सहयोगी साहित्यकार और परवर्ती नाटककारों ने उनके आत्मचिंतन को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और एक बार फिर भारतेंदु टैगोर के प्रयास लगभग निरर्थक होकर रह गए। सुखद आश्चर्य की बात है कि 20वीं शताब्दी के मध्यकाल में हमारे देश में दो रंग चिंतक लगभग एक साथ उभर कर आए, एक बंगाल में और दूसरे मध्य प्रदेश में। एक ने टैगोर को तलाश किए, सूत्रों को पकड़कर फिर से भारतीय रंगमंच की अस्मिता की खोज का प्रयास शुरू किया। वे थे स्वर्गीय शंभु मित्र और दूसरे हैं श्री हबीब तनवीर, जिन्होंने भारतेंदु के नाटकों या उनके रंग चिंतन से सीधा प्रभाव ग्रहण किए बिना लगभग उसी भावधारा को फिर से प्रभावान बनाया जो भारतेंदु के रंग चिंता का प्रमुख कारक तत्व थी। यह सच है कि हबीब तनवीर ने भारतेंदु के किसी भी नाटक का अभी तक मंचन नहीं किया। यह भी सच हो सकता है कि हबीब तनवीर भारतेंदु के नाट्य चिंतन से लगभग अपरिचित हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतेंदु के नाटकों का मुहावरा और हबीब तनवीर के नाटकों का मुहावरा पूरी तरह एक ही जमीन पर प्रतिष्ठित है और दोनों ही नाटककार अपने रंग सृजन में लोक तत्वों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। हमारे विवेचन की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है, जहाँ शंभु मित्र और हबीब तनवीर अन्य समकालीन भारतीय रंग चिंतकों से अलग जमीन पर खड़े होकर नजर आते हैं। खासतौर से हबीब तनवीर, जिनकी रंगधर्मिता भारतीय पारंपरिक रंग कर्म की पहचान सिद्ध हुई है, उनकी रंगभाषा, अभिनय पद्धति, सामाजिक प्रतिबद्धता और अंततः दर्शक पर पड़ने वाला प्रभाव, वे प्रमुख तत्व हैं जो उनके रंगकर्म को पाश्चात्य रंगकर्म से पूरी तरह अलग करते हैं और अंततः आधुनिक भारतीय नाट्यकर्म पर अपने मुहावरे की गहरी छाप छोड़ते नजर आते हैं।